ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 30। अध्याय का नाम है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। श्लोक संख्या 7। सब लोग मेरे पीछे बोलिए, सब लोग मेरे पीछे बोलिए। संदेह मान सर्वांग एसाम उन्वहनाधिनाम करोत्य विरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। संदेह्यमान सर्वांग एसाम उन्वहनाधिनाम करोत्य विरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। संदेह्यमान सर्वांग एषां उन्वहनाधिना करोत्य विरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है तो भी ऐसा मूर्ख कभी ना पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम श्लोक के शब्दों को फिर से समझेंगे। यहां पर कपिल भगवान उपदेश दे रहे हैं माता देवहूति को, और ये बता रहे हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है। इसके पहले कपिल भगवान ने बताया था कि अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु संपत्ति और मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण होता है उसका है? तो ये प्रगाढ़ जो है उसकी जो आसक्ति है इस कारण से तो आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, संदेह्यमान सर्वांगा, उसका पूरा शरीर जल रहा है, पूरा शरीर जल रहा है, मतलब क्या है, बुखार ज्वर, उसको ज्वर सता रहा है, है? तो पूरे शरीर में जो है उसको चिंता व्याप्त है, चिंता व्याप्त है। किस चीज की चिंता व्याप्त है कि मैं इनका भरण पोषण कैसे करूं, अपने घर परिवार का भरण पोषण कैसे करूं। संदेह्यमान सर्वांग एसाम उद्वहन आधी, वो आधी है, आधी और व्याधि दो दो शब्द है ना। व्याधि का मतलब शरीर के रोग, जो शरीर की बीमारी है उनको व्याधि बोलते हैं, और आधी मन की बीमारी है ना, मेंटल डिसीज है ना। तो मन की जितनी बीमारियां हैं उनको कहते हैं आधी, और शरीर की जितनी बीमारियां हैं उनको कहते हैं व्याधि। तो आधियां भी बहुत प्रकार की होती हैं, मानसिक बीमारियां भी बहुत प्रकार की होती हैं, और शारीरिक बीमारियां भी बहुत प्रकार की होती हैं। तो व्याधियां अनेक प्रकार के हैं और आधियां भी अनेक प्रकार की हैं। तो यहां पर कौन सी आधी है उसको सता रही है, अपने कुटुंब के भरण की, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने की आधी यानी चिंता उसको सता रही है। वैसे तो भगवान सब करते हैं, भगवान पूरे पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, लेकिन चूंकि वो अपने को कर्ता समझ रहा है, अपने को भोक्ता समझ रहा है, तो वो चिंता जो है उसके ऊपर जो है आ रही है। ये माया ने जो है ऐसी चिंता उसके अंदर पैदा कर दी है कि मुझे करना, मैं कर रहा हूं वो मुझे करना है भरण पोषण। तो ये जो है आधी ये साम उद्वहन आधिना, तो इन सब का जो है भरण पोषण की जो चिंता है इसके कारण से उसका पूरा शरीर क्या है जल रहा है, जलता रहता है। करोति अविरतम, बोलो करोति माने करता है, अविरतम, अविरतम का मतलब है कि विरत नहीं होता है। किससे? दुरितानि दुराशयः, दुरितानि माने पाप कर्म, पाप कर्म करता है ना। और फिर दुराशयः, दुराशय का मतलब है गलत इरादे से। एक तो महाशय होता है, जिसका इरादा अच्छा होता है तो उसको महाशय बोलते हैं, आशय माने इरादा है ना, और दुराशय का मतलब है गलत इरादा। तो पाप कर्म करता है गलत इरादे से करता है ना। जैसे कि अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये तो कितनी हत्या कर रहे हैं है? लेकिन यहां पर दुराशय नहीं है, गलत इरादा नहीं है, ये है यहां पर अच्छा इरादा कि भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के आदेश से कर रहे हैं। सब प्रकार से उनको शास्त्र साधु आचार्य का समर्थन प्राप्त हुआ है। तो कभी कभी कोई काम लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें दुराशय नहीं होता है, गलत आशय गलत इरादा नहीं होता है ना। और कोई कोई काम जो है अच्छा भी अगर किया जाता है और उसमें अगर दुराशय होता है, गलत आशय होता है, गलत इरादा होता है, तो वो अच्छा काम भी गलत माना जाता है। और गलत काम भी अगर अच्छे इरादे से किया जाता है तो वो अच्छा माना जाता है। जैसे अर्जुन लगता है गलत काम कर रहे हैं, ये भयानक युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अच्छे इरादे से कर रहे हैं तो ये क्या है, अच्छा काम है। दुराशय है ना। और दुराशय यहां प्रभुपाद जी अनुवाद में जो अनुवाद कर रहे हैं वो क्या है, कभी ना पूरे होने वाली आशाओं के लिए। तो यहां दूसरा अर्थ ये भी दुराशय का जो प्रभुपाद जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि आशा उसके अंदर कैसी आशाएं हैं जो दू हैं, दू दू का मतलब है जो कभी पूरी नहीं होंगी है ना। तो दुराशय का मतलब ये भी है, कि उसने जो है ऐसी आशाएं उसने पकड़ ली हैं, ऐसी आशाओं को पकड़ा हुआ है जो कभी पूरी नहीं होंगी, और उनके लिए वो गलत काम करता जाता है कि वो पूरी हो जाए, लेकिन आशा क्या है, वो दुराशा है। दुराशय का मतलब ये है ना। और शब्दार्थ है प्रभुपाद जी दुराशय का अर्थ क्या लिखते हैं, दुर्बुद्धि है, जिसकी बुद्धि खराब है, जिसका दिमाग खराब है ना। तो इस प्रकार से दुराशय शब्द के जो है तीन अर्थ निकल रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की कहा गया है कि आज के समय में जब कलयुग इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से पूर्ण रहता है। प्रभुपाद जी के शब्दों में बहुत शक्ति है। प्रभुपाद जी हैं क्या लिख रहे हैं, कलयुग इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके, प्रत्येक व्यक्ति ने एक झूठी भेंट स्वीकार की है माया की। अगर माया की भेंट है तो झूठी होगी। माया का मतलब क्या है, मां का मतलब नहीं, या माने ये जो नहीं है और माया देती है ना, माया की भेंट है तो झूठी है। और वो क्या भेंट है, परिवार, ये तुम्हारा परिवार लो, ये तुम्हारा परिवार। जैसे बच्चा पैदा होता है तो माया जो है उसको भेंट देती है, ये लो ये तुम्हारा परिवार ना? तो बच्चा जो है अपनी पहचान करता है, ये मेरे माता हैं, हमेशा रही हमेशा रहेंगे, ये मेरी माता, ये हमारे पिता हमेशा थे, कोई समय ऐसा नहीं था जब नहीं थे हमारे पिता, और ना कभी कोई समय होगा ऐसा जब हमारे पिता नहीं रहेंगे, और ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे अभी एक साल पहले बच्चे का जन्म हुआ है और उसके अंदर एक ये दुराशा पैदा हो जाती है, गलत आशा, गलत विचार, क्या कि मैं हमेशा ऐसे ही था, क्या एक साल का बच्चा हमेशा था और हमेशा एक साल का बच्चा रहूंगा, कभी ऐसा मैं समय नहीं था जब मैं एक साल का बच्चा नहीं था और कभी ऐसा समय नहीं होगा आगे कि एक साल का बच्चा मैं नहीं रहूंगा। और मेरी माता भी हमेशा रही हैं, हजारों सालों से ये थी और हमेशा रहेंगी, है ना। ये मेरे पिता, ये भी जो है हमेशा मेरे पिता थे, हमेशा मेरे पिता रहेंगे, कभी ऐसा समय नहीं था है जब नहीं थे मेरे पिता, ऐसे ही थे, इसी अवस्था में थे, इसी अवस्था में रहेंगे। ये माया की भेंट है नित्य। तो अपने शरीर को नित्य मान रहा है वो, नित्य तो वो स्वयं है जीव, है ना, लेकिन अपनी पहचान तो वो जीव के साथ नहीं कर रहा, शरीर के साथ कर रहा है। तो शरीर को ही नित्य मान रहा है कि शरीर नित्य है मेरा और ये मेरा परिवार में नित्य है, नित्य है। ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये मौसी, ये चाचा, ये काका, ये दादा, ये बाबा, और हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। नते वाहम जातु नाशम न तम ने मे जनाधिपा। तो भगवान जैसे आत्मा के लिए कहे, वो शरीर के लिए समझ रहा है, परिवार के लिए समझ रहा है, कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं इस शरीर में इसी अवस्था में नहीं था, एक साल का बच्चा नहीं था और एक साल का बच्चा आगे भी कभी नहीं होगा समय कि एक साल का मैं बच्चा नहीं रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा, है ना। तो ये माया की झूठी भेंट है ना। तो प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है इसमें बड़ी गहराई है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं देखिए, आज के समय में कलयुग इतना प्रबल है, है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से पूर्ण रहता है, है? चिंताओं से पूर्ण रहता है। अब उसने मान लिया कि ये मेरा परिवार है, अब मैं इसका मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं नियंता हूं, है? और मैं इनका पालन करने वाला हूं, मैं रक्षा करने वाला हूं, है ना। तो इसी में अब जो है उसको क्या हो गई, चिंता हो गई कि कैसे रक्षा होगी, कैसे मेरा परिवार चलेगा, कैसे घर चलेगा, है ना। तो ये चिंता आधी चिंता है, और ये चिंता इतनी खराब है कि वो बता नहीं सकता किसी दूसरे को। क्यों? अगर बताएगा तो अपनी कमजोरी का पता चल जाएगा कि मैं कितना कमजोर हूं, मैं कितना असमर्थ हूं, मैं चिंतित हूं, है ना। तो एक बहुत बड़ा जो है एक ये बंधन है, और ये चिंता जो है फिर हजार गुना तीव्र हो जाती है जब वो व्यक्ति बता नहीं सकता किसी को, क्योंकि बताने में लज्जा आती है, लज्जा आती है, है? क्योंकि अपने को चूंकि वो मानता है कि मैं ही पूर्ण हूं और मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, मेरे नियंत्रण में सब कुछ हो रहा है, तब चिंता कैसे बताएगा। अगर चिंता बताएगा तो फिर ये पता चल जाएगा कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा मैं समझ रहा हूं अपने को, है ना। तो ये जो आधी ये आधी जो है मतलब क्या है, ये माया ने जो है पैदा कर दी। माया जो है कलयुग के जीवों पर ये प्रभाव डालती है कि तुम जो है ईश्वर हो, तुम भोगी हो, ईश्वर हो हम भोगी सिद्ध, हम बलवान सुखी, तुम सुखी हो। अब ये जो है अपने को मानना कि मैं सुखी हूं, तो ये बहुत बड़ा दुख है। अंदर अंदर वो जो है चिंता से जल रहा है, और फिर वो चिंता इतनी मतलब जलाती है कि संदेह मान सर्वांगहा, कि पूरा शरीर ही जो है उसका जल रहा है चिंता में, पूरा शरीर जल रहा है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से पूर्ण रहता है। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, गीता में भगवान कहते हैं चिंताम अपरिमेयाम प्रलयांताम मृत्यु पर्यंत उपाश्रिता, वो उपाश्रित हैं, चिंता के उपाश्रित हैं, है ना। माम उपाश्रिता, जो कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण के उपाश्रित होते हैं, है ना, और जो भक्त नहीं है कृष्ण का तो चिंता के उपाश्रित रहता है, चिंता के संग में रहता है ना। वो कृष्ण भावनामृत में डूबा रहता है, जो भक्त है कृष्ण भावनामृत में डूबा रहता है, वो चिंता भावना मृत है ना, ये अमृत नहीं है, ये मृत है, मृत्यु चिंता भावना ये अमृत नहीं है, मृत है, मृत इसमें जो है वो डूबा रहता है, मृत्यु के समान कष्ट उसको जो है पूरे जीवन भर उसको मृत्यु के समान कष्ट दिखाई पड़ता है। तो ये जो है चिंता, तो यहां अपरूपा लिखते हैं कि चिंताओं से पूर्ण रहता है, ऐसे में एक महान साम्राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं जितना कि एक छोटे परिवार का पालन करना। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, महान साम्राज्य का पालन करना कठिन नहीं है। प्राचीन काल में जब कलयुग नहीं था, कलयुग का प्रभाव नहीं था, तो प्राचीन काल में बड़े बड़े साम्राज्य को चलाना आसान था, बड़े आसान थे, कि राजा जो है अगर शुद्ध आचरण में लगा हुआ है, कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, तो प्रजा जो उसी प्रकार से आचरण करेगी, कोई चिंता ही नहीं है, इतना ज्यादा जो है कोई चिंता नहीं, और सब कुछ जो है भगवान की कृपा से सब कुछ मिलती है, आवश्यकताएं जीवन की सब कुछ मिलती है, केवल एक की पॉइंट जो मतलब केंद्र बिंदु है वो कौन है, राजा होता है। राजा अगर जो है राजर्षि है, कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है, कृष्ण के नियमों का पालन करता है, सब प्रजा जो उसी प्रकार से चलेगी, है ना। तो बड़ा साम्राज्य चलाना भी जो है कठिन नहीं था, लेकिन इस समय छोटा परिवार चलाना भी बहुत कठिन है। क्यों? कृष्ण भावना अभावित है, कृष्ण भावना मृत के बिना छोटा परिवार चलाना भी बहुत मुश्किल है, है ना। जैसे बताया जाता है कि जो सरल से सरल कार्य भी जो है कठिन हो जाता है, भगवान की कृपा के बिना सरल से सरल कार्य भी कठिन हो जाते हैं। ये सब कैसे चल दिए सब लोग हैं, जाने वाले हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा तो मैं क्या बता रहा था, आप लोग सुन रहे ध्यान से, कृष्ण की कृपा के बिना, कृष्ण भावनामृत के बिना सरल से सरल कार्य भी क्या हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, है ना। और कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण की कृपा में कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, है ना। तो ये है, तो यहां पर प्रभुपाद क्या बताते हैं, एक छोटा सा परिवार चलाना भी कठिन है, कठिन है। और कलयुग में क्या होते हैं, छोटे छोटे परिवार होते हैं, कली का मतलब क्या है, कलह, कलह है, उससे वो विभाजन कर देता है ना। तो कैसे विभाजन कर देता है, कि जैसे ही लड़के की शादी हुई तो वो माता पिता से अलग हो जाता है ना, ये कलयुग का प्रभाव है ना। जो भाई भाई हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे परिवार होते हैं, है? क्या पति पत्नी और दो बच्चे, बस नियोजित परिवार, सीमित परिवार, सुखी परिवार, और पहले ऐसा नहीं था। श्रीवास का घर जो था, श्रीवास आंगन जो अभी भी है, बहुत बड़ा, उसमें उनके पांच भाई थे और पांचों भाइयों के जो है पत्नियां थी, उनके बच्चे थे और दास दासी थे, कितने थे, एक ही परिवार में सब रहते थे, और श्रीवास ठाकुर चलाने वाले थे, पालन करने वाले थे, परिवार का पालन करने वाले थे, उनको कोई भार नहीं था, कोई भार नहीं था, कुछ नहीं करते थे, कृष्ण का भजन करते थे, सब कुछ आता था, कहीं जाते भी नहीं थे, मांगने तक नहीं जाते थे, मस्त है ना। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार प्रश्न किया कि मैं देखता हूं कि तुम घर में ही बैठे रहते हो, तुम कहीं जाते नहीं बाहर, मांगने के लिए नहीं जाते बाहर, ऐसे में कैसे घर को चलाओगे। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि जैसे चलना होगा चलेगा, जिसके भाग में जो होगा सो मिल जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तो तुम संन्यास ले लो, बोले संन्यास भी नहीं लूंगा, है ना। इतने स्वच्छंद स्वतंत्र हैं कृष्ण के भक्त कि भगवान भी कहते हैं संन्यास लो तो कहते संन्यास नहीं लूंगा, गृहस्थ की जिम्मेदारी भी नहीं पूरी करूंगा, गृहस्थ की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं करूंगा और संन्यास भी नहीं लूंगा, है? तो फिर भगवान चैतन्य पूछते हैं फिर कैसे परिवार चलेगा। तो उन्होंने तीन बार ताली बजाई, साफ कह रहा हूं, एक दो तीन, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये एक दो तीन कह के जो ताली बजाई इसका क्या मतलब है? बोले इसका मतलब यह है कि तीन दिन तक भोजन नहीं मिला तो गले में घड़ा बांध करके गंगा जी में प्रवेश कर जाऊंगा। तो भगवान चैतन्य कहते हैं क्या कहा श्रीवास, तुम भूल गए, मैंने गीता में स्वयं कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परियोपासिते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम मैं अपने सिर में रख करके भोजन लाता हूं अपने भक्तों के लिए और मेरा सुदर्शन चक्र उनका क्षेम करता है, उनकी सुरक्षा करता है ना। फिर भगवान ने क्या कहा कि तुम सुखपूर्वक घर में बैठे रहो, है? बिना मांगे तुम्हारे घर में सब कुछ आएगा, चाहे लक्ष्मी जी को भीख मांगनी पड़े लेकिन तुम्हें दरिद्रता नहीं आएगी। देखो क्या इतना बड़ा आश्वासन, लक्ष्मी जी जो संपत्ति की देवी है उनको भीख मांगना पड़ेगा लेकिन अगर लक्ष्मी जी को भी अगर भीख मांगना पड़े तो भी तुमको जो है दरिद्रता नहीं आएगी, इतना आश्वासन दिया। इतना बड़ा परिवार है ना, लेकिन अभी क्या है छोटे छोटे परिवारों भी नहीं चला पाते हैं, है? कितनी कठिनाई है ना। एक बड़ा साम्राज्य भी जो है चलाना आसान, छोटा सा परिवार भी अब नहीं चला पा रहे हैं, है ना। यहां पर लिखते हैं हमारा परिवार माया जनित है। अब ये दूसरी बात, पहली बात तो ये थी परिवार को चलाना उसकी चिंता, है? अब प्रभुपाद जो है एक दूसरे विषय में आ जाते हैं जो कि बड़ा ही गहरा है, जिसमें बहुत तत्व की बात है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि हमारा परिवार माया जनित है। तो माया जनित इसको कैसे कहेंगे माया जनित? वैसे तो सब वास्तविक ही है, सब कुछ ठीक ही है, ये माता हैं, ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये सगे भाई हैं और ये चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, तो हम इसको मिथ्या तो नहीं कहते, वास्तविक तो है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं माया जनित है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अनित्य है, अनित्य है, लेकिन उसको हम नित्य समझ रहे हैं, ये एक भ्रम दिमाग में भरा हुआ है। जबकि आंखों से सब कुछ देख रहे हैं कि शरीर बदल रहा है, 10 साल पहले शरीर दूसरा ही था, है ना, और ये शरीर बदलता जा रहा है, कुछ साल पहले मेरा जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ये शरीर नहीं थे, शरीर बड़ी तेजी से बदलते जा रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी माया ने जो है एक ऐसा प्रभाव डाला हुआ है कि क्या दिखाई दे रहा है कि सब ज्यों का त्यों सब कुछ ठीक चल रहा है, ज्यों का त्यों ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही रहेगा, इसे कहते हैं माया जनित परिवार। ये माया है ना, आप समझ रहे हैं? तो मतलब वास्तव में माया क्या है? ये विचार, ये विचार कि मेरा है, या ये नित्य है, ये परिवार मेरा है, ये नित्य है, है ना। तो ये जो विचारधारा है ये माया की है, माया ने पैदा कर दी, है ना। देखिए माया का कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव है कि आंखों में देखते हुए भी जो है व्यक्ति नहीं देख पाता, नहीं सोच पाता, इतना उसको जो है बांधा हुआ है, इतना माया ने बांधा हुआ है अज्ञान से, इतना बांधा हुआ है, ये सब कुछ देखते हुए भी सब नष्ट होता जा रहा है, सब बदलता जा रहा है और नए नए लोग पैदा हो रहे हैं और लगातार लोग मरते जा रहे हैं, सब कुछ बदलता जा रहा है, सब कुछ छूटता जा रहा है ना। मेरा कुछ भी नहीं है और मुझे भी शरीर छोड़ना है ना, ये बिल्कुल आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन तो भी आंखों को किस तरह से माया ने मतलब बंद किया हुआ है, है? कि सब कुछ लग रहा है कि ज्यों का त्यों है, नित्य है, ऐसे ही रहेगा, है ना। तो ये जो है इसे कहते हैं माया जनित। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ये कृष्ण लोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। तो ये मुख्य बात अब प्रभुपाद जी जो बताना चाहते हैं वो क्या है, कृष्ण लोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। कृष्ण, कृष्ण लोक मतलब गोलोक, गोलोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। गोलोक के परिवार में, गोलोक में जो परिवार है, कृष्ण का परिवार है, उसमें बहुत प्रकार के संबंध हैं, आप समझ रहे हैं। साले, जीजा और मामा, भांजा और चाचा, भतीजा, पिता, पुत्र, माता, पुत्र, पुत्री ना, ससुर, साले, जीजा, कितने कितने संबंध हैं कृष्ण के परिवार के, आप समझे। और वो जो है क्या है, असली है परिवार, क्योंकि उसमें कुछ बदलता नहीं है, कोई अवस्था किसी की बदलती नहीं है। जो जो इतने छोटे बच्चे हैं वो इतने ही रहते हैं, काल का प्रभाव नहीं है, आप सुन रहे हैं, वहां काल का प्रभाव नहीं है। जैसे नंद महाराज बूढ़े हैं, वृद्धावस्था है, हैं? तो जो वृद्धावस्था का भी सुख है वहां मृत्यु नहीं है। वृद्धावस्था यहां पर जो वृद्धावस्था होती है तो इसका मतलब क्या है, मृत्यु के निकट। वृद्धावस्था का मतलब अब अगला कदम क्या है, मृत्यु का। लेकिन गोलोक धाम में वृद्धावस्था है लेकिन मृत्यु नहीं है। वृद्धावस्था का भी क्या है, एक सुख है। यहां तो वृद्धावस्था आती है कष्ट भोगने के लिए और मृत्यु की सूचना दे रही है, वहां पर वृद्धावस्था क्या है, वो भी अमृत है, वो भी एक सुख है। वो वृद्ध होने के नाते उनका सब लोग सम्मान करते हैं, उनकी उनका आदेश चलता है, कृष्ण के ऊपर भी उनका आदेश चलता है। वृद्धावस्था का ये सुख है कि कृष्ण के ऊपर भी उनका आदेश चलता है, उनके आदेश के बिना जो है कृष्ण जा नहीं सकते कहीं, जब तक उनका आदेश ना मिल जाए, है ना। तो वृद्धावस्था का भी सुख है, जवानी का भी सुख है, बचपन का भी सुख है, और जो बच्चे वो हमेशा बच्चे रहते हैं, है ना, आप समझ रहे। तो विकृत प्रतिबिंब है, तो विकृत प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जो गोलोक धाम में जो बच्चे वो हमेशा बच्चे रहते हैं, हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे, जो जवान है वो हमेशा रहे, हमेशा रहेंगे, नित्य वो नित्य बालक हैं, जो बालक हैं वो नित्य बालक हैं, जो जवान है नित्य जवान है, सब कुछ नित्य है, हर चीज नित्य है, शाश्वत है। तो वो प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है, आप समझ रहे। तो यहां पर हमारा जो भौतिक शरीर है ये बदल रहा है, लेकिन वो जो छाया है, प्रतिबिंब है, तो उस कारण से हम हमारे दिमाग में ये विचार बना हुआ है कि मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा, हमेशा ऐसे था, आप समझ रहे। पशु भी अगर उसको बोलना आता तो आप पूछो, एक बछड़ा है उससे पूछो तो वो यही जवाब देगा कि हमेशा मैं बछड़ा रहा, हमेशा, कोई समय ऐसा नहीं था कि मैं बछड़ा नहीं था, इतनी बड़ा, और कोई समय ऐसा नहीं होगा जब मैं इतना बड़ा बछड़ा नहीं रहूंगा। तो है क्या वो प्रतिबिंब, उसका वो प्रभाव है जिस कारण से वो ये सोच रहा है, आप समझ रहे। तो ये चेतना है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण लोक में भी परिवार, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ हैं। कृष्ण के लोक में भी क्या है, परिवार हैं, मित्र हैं, समाज है, माता पिता सब कुछ हैं, किंतु वे नित्य हैं। यहां पर हमारे शरीर बदलते ही हमारा पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये अंतर है ना। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जो परम सत्य है वो क्या है, उसमें वैरायटीज हैं, विविधताएं हैं, है ना, विविधताएं हैं। तो जो मायावादी हैं तो उनकी जो समस्या है वो यही है कि चूंकि उन्होंने इस भौतिक संसार में देखा कि भाई पारिवारिक जीवन क्या है, अनित्य है, तो फिर उन्होंने ये दिमाग में विचार कर लिया कि पारिवारिक जीवन अनित्य ही होता है। पारिवारिक जीवन का मतलब है अनित्य, शाश्वत नहीं हो सकता। कि इस भौतिक जगत में पारिवारिक जीवन क्या है, अनित्य है। तो उन्होंने दिमाग में विचार कर लिया कि पारिवारिक जीवन क्या है, अनित्य ही है। लेकिन वास्तव में एक ऐसा भी पारिवारिक जीवन है जो कैसा है, नित्य है, आप समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो है, मतलब कितने आपको जगाने वाले हैं, ये आपको जगा रहे हैं कि वहां पर पारिवारिक जीवन है,
है ना। इसलिए वो लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें शून्य में मिल जाना है, कोई परिवार हमको नहीं चाहिए। पारिवारिक जीवन में उन्होंने देखा है कि दुख है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, हमें पारिवारिक जीवन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, निराकार जीवन चाहिए, निराकार। आप समझ रहे, तो निराकार में वो मिल जाना चाहते हैं, ज्योति में मिल जाना चाहते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, है ना, अपने से अलावा, अपने अलावा और कोई है ही नहीं है? इस प्रकार का जीवन चाहिए कि मैं ही अकेला हूं और कोई मेरे अलावा और कोई नहीं है, है ना। तो ये कैसा है, ये जीवन नीरस जीवन है। आप सुन रहे, मान लीजिए कि आप ऐसा जीवन चाहते हैं कि भाई आप केवल अपना अनुभव करें कि भाई मैं जिंदा हूं और कोई नहीं है, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं है, है कि नहीं। और इस जीवन में कब तक रहेंगे वो, इसलिए फिर से वो माया में आ जाते हैं, जो निर्विशेषवादी हैं फिर से माया में आ जाते हैं। आरो एक क्षीण परम पदम तथा पतन दो अनादित कृष्ण दंग्रिया, क्योंकि कृष्ण के परिवार का आदर नहीं करते हैं, इसलिए वो इस माया के परिवार में फिर से आ जाते हैं। आप समझ रहे, जो निर्विशेषवादी हैं वो माया के परिवार में फिर से आ जाते हैं और फिर से देश की सेवा में लग जाते हैं या भूखों की सेवा में लग जाते हैं, रोगियों की सेवा में लग जाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, कपड़े बांटते हैं, दवाई बांटते हैं, भोजन बांटते हैं और अपना परिवार बनाते हैं। फिर अब जिसको उन्होंने मिथ्या माना है कि जगत मिथ्या है, उसी को फिर से वो फिर स्वीकार करते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान का जो परिवार है उसको उन्होंने आदर नहीं किया, भगवान के परिवार का आदर नहीं किया, है ना। इसका मतलब क्या है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो प्रार्थना है वो क्या है कि मुझे अपने परिवार में शामिल कर लो, अब जो भी हूं मैं आपके परिवार में, मुझे आप बना लो, कुछ ना कुछ अपने परिवार में बना लो, हे कृष्ण अपना बना लो, ठीक है कि नहीं। प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग कृष्ण के परिवार के हैं, अब जो भी हो कृष्ण के परिवार में हम, तो हमें क्या करना है, उसी स्थान में वापस जाना है, उसी स्थिति में वापस जाना। आपका जो है कोई नाम भी है, आपका कुछ विशेष काम भी है, आपका कोई वहां घर भी है, वो जगह खाली पड़ी हुई है आपकी, ठीक है ना। जैसे मशीन का एक पुर्जा है ना, अगर निकल जाए मशीन से तो हो सकता है कि मशीन काम करती रहे, कोई मशीन, क्योंकि भगवान की शक्ति से तो सब सेवा होती हो ही रही। तो भगवान के धाम में आप नहीं हैं तो भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि भगवान की शक्तियां हैं जो कि सब कार्य करती हैं। अगर आप नहीं हैं तो भगवान की शक्ति जो है वो कार्य कर लेगी जो आवश्यकता है सेवा की, है ना। लेकिन वो मशीन का पुर्जा जो है अब पड़ा हुआ है सड़क में, बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। और वो पुर्जा अगर मशीन में फिर से लग जाए तो उसका फिर बड़ा उपयोग है, उसका बड़ा महत्व है, है ना। तो हम कृष्ण के परिवार में हम थे, है ना। तो ये जो है मतलब कृष्ण का परिवार, और कृष्ण के परिवार में क्या है, वैसे ही जैसे भौतिक संसार में आसक्ति होती है, अपनी पहचान करते हैं, ये मेरे मामा, ये मेरे पिता, ये मेरे भांजे, मेरे दादा, मेरे ससुर, ये सब, ऐसे कृष्ण के परिवार में अपनी सब एक दूसरे से क्या है, बहुत क्या है, घनिष्ठता है, घनिष्ठता है। कृष्ण को केंद्र मान करके सब, बहुत बड़ा परिवार है कृष्ण का, जिसमें सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं पारिवारिक, है ना। तो यहां प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं इसको आप समझिए कि बहुत जो है ये तात्पर्य ऐसा है कि आप इसको जीवन भर आप याद रखो, मतलब ये एक ऐसी चीज जो कभी मतलब भूलना नहीं है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण लोक में भी परिवार, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ है, लेकिन वो माया नहीं है, क्यों माया नहीं है? यहां पर हम कहते भाई ये तो माया मोह है, वहां पर भी मोह है, है? सब एक दूसरे से आसक्त हैं, अपना संबंध पारिवारिक संबंध बनाए हुए हैं, है ना, तो उसको माया क्यों नहीं कहेंगे? कौन बताएगा इसका क्या होता है? नित्य है वो, नित्य है, लेकिन हम यहां पर कहते हैं माया क्यों? हम कहते हैं इनको ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिता हैं, माया है, क्योंकि पहले भी नहीं थे, कुछ साल पहले ही पैदा हुए और कुछ साल के बाद फिर नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये जो है हमने अपने जो बनाया हुआ संबंध है इस तरह से कि भाई ये हमेशा के लिए ऐसे संबंध बन गया, माया है, है ना। तो इसलिए जो है यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि सब कुछ है किंतु वे नित्य हैं। यहां पर हमारे शरीर बदलते ही हमारे पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं। देखो अपना शरीर बदल गया, पूरा का पूरा परिवार बदल गया, है कि नहीं? कितना बड़ा परिवार अपना बनाया था, हाँ, मेरा एक लड़का विदेश में है, मेरा एक लड़का अमेरिका में है, मेरा एक लड़का अफ्रीका में है, इधर बिजनेस है, उधर बिजनेस है, इधर फैक्ट्री है, उधर फैक्ट्री है, इधर मेरी दुकान है, उधर मेरी दुकान है, 50 दुकानें हैं, 50 फैक्ट्रियां हैं मेरी, और शरीर बदल गया, सब खत्म, सब खत्म, है ना। और माया की एक जरा सी ठोकर लगी और छोड़ गया शरीर, है ना। अब दूसरा शरीर मिला, अब क्या है? यहां पर ऊपर लिखते हैं हमारे शरीर बदलते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध बदल जाते हैं। कभी हम मनुष्यों के परिवार में होते हैं तो कभी देवताओं के परिवार में, और कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में, और फिर वो उसमें भी वही नित्य नित्यता का विचार रहता है। अब कुत्ता भी बन गया तो कुत्ता भी सोच रहा है कि ये मेरा परिवार नित्य हमेशा रहा, हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही मैं कुत्ता हमेशा रहा, हमेशा कुत्ता रहूंगा, ये मेरा परिवार, है ना। सब परिवार में माया का ऐसा प्रभाव है। परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है, अतः ये असत कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं कि जो मायावादी लोग हैं तो उनकी जो गलती है वो क्या है कि उन्होंने परिवार, समाज, मित्रता को उन्होंने कहा कि ये क्षणिक है, तो वो फिर भगवान के धाम में भी जो है उसको कहते ये भी माया, तो ये गलत है। वो कृष्ण के शरीर को ही माया कहते हैं, कृष्ण के नाम को ही माया कहते हैं, कृष्ण की लीलाओं को ही माया कहते हैं, कृष्ण के रूप को ही माया कहते हैं, है ना। तो है क्या? बहुत बड़ा अपराध। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? मायावादी कृष्ण अपराधी। तो कृष्ण का रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के का परिवार कुछ भी माया नहीं है, क्योंकि ये नित्य है। जहां अनित्य को आप नित्य समझते हैं तो माया होती है, लेकिन नित्य को आप नित्य समझते हैं तो माया नहीं है, बल्कि नित्य को अनित्य समझना यह माया है। तो जो मायावादी हैं वो कृष्ण को जो है कृष्ण के रूप को माया समझते हैं, जबकि वास्तव में वो माया में है, वो माया में, उनके ऊपर माया का प्रभाव पड़ा है। दो प्रकार का माया का प्रभाव है, अनित्य को नित्य मानना, ये तो संसार में है ही है, लेकिन दूसरे जो मायावादी उनके ऊपर भी माया का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वो नित्य को नित्य मान रहे हैं। सोचिए कृष्ण के परिवार को, कृष्ण के भक्तों को, कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण की सेवा को माया मानते हैं, ये भी उनके ऊपर माया का प्रभाव है ना। तो दो प्रकार से माया काम कर रही है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं ये कहा जाता है कि जब तक हम इस असत क्षणभंगुर अस्थाई समाज तथा परिवार से बंधे रहते हैं तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं, है ना। भौतिकतावादी ये नहीं जानते कि संसार में परिवार, समाज तथा मित्रता छाया मात्र है। ये छाया, परिवार, समाज, मित्रता छाया मात्र है। अब छाया क्या है? अब मैं देख रहा हूं मेरे हाथ की छाया, आप समझे हैं? अब ये छाया क्या है? ये कभी छोटी होती कभी बड़ी होती है, मैं ऐसे कर रहा हूं, अभी छोटी है अभी बड़ी हो रही है, है ना, आप समझ रहे? और फिर कभी होती कभी नहीं होती, है छाया बदलती रहती है। तो ये जो भौतिक जगत है ये क्या है? कृष्ण के परिवार की छाया है, कृष्ण के परिवार की छाया है। तो छाया जैसे बदलती है लेकिन वस्तु नहीं बदल रही, मेरा हाथ जो है उतने का उतना है, हाथ देखो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, आप समझ रहे, तो छाया बदल रहे। तो ये छाया है, कृष्ण के परिवार की छाया है, है? तो छाया को देख करके भी आप असली वस्तु का अनुमान लगाइए कि असली वस्तु होना चाहिए, मतलब एक ऐसा परिवार होना चाहिए जो कैसा है, नित्य है। वहां के घर मकान भी कैसे हैं, नित्य हैं, चिंतामणियों से बने हुए हैं घर मकान। यहाँ के घर मकान कैसे होते हैं, टूट फूट जाते हैं, इसलिए मेंटेनेंस एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अलग ही बना हुआ है, है ना भाई। यहाँ टूट रहा है, इसको रिपेयर कराओ, इधर रिपेयर कराओ, रिपेयर हमेशा चलते ही रहता है, है? अगर ना रिपेयर हो तो 10 साल में ही देखो क्या हाल हो जाएगी, सब इधर टूटा उधर टूटा, और 20 साल में फिर और बुरी हालत हो जाएगी, और 50 साल में बिल्कुल खंडहर हो जाएगा। लेकिन वहां पर नित्य है, वहां पर घर मकान भी नित्य है, है ना, सब चीज नित्य है। तो यहां पर ऊपर देखिए, इस श्लोक में तो इतना नहीं है, इस श्लोक में तो कपिल भगवान जो संदेश दे रहे हैं वो एक ही प्रकार का संदेश है, लेकिन तात्पर्य प्रभुपाद जी जो हमको दे रहे हैं वो कितनी आंखें खोलने वाला है, इसमें कितनी आंखें खोलनी है, आप सुन रहे। तो भक्ति वेदांत तात्पर्य की जो विशेषता है वो ये है, एक तात्पर्य में आपको जीवन भर के लिए क्या मिल जाता है, एक सोचने का विषय मिल जाता है, पूरा संदेश मिल जाता है, तात्पर्य पूरी, मतलब बात पूरी की पूरी बात जो है आपको मालूम हो गई, है ना। तो ये भक्ति वेदांत तात्पर्य की विशेषता है कि एक दिन में आप एक तात्पर्य भी अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें जो है आपको कितना मतलब सोचने का विषय मिल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिकतावादी ये नहीं जानते कि संसार में परिवार, समाज तथा मित्रता छाया मात्र हैं और वे उनसे जुड़ जाते हैं, स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा तपते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे ऐसी मिथ्या परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं। देखो यही है, माया जो है उनको मतलब कितना कष्ट दे रही है, उनको परिश्रम करना पड़ रहा है, बनाए रखने का परिश्रम करना पड़ रहा है, जबकि सब कुछ छूटता जा रहा है, उनका शरीर भी छूट रहा है, लेकिन तो ही परिवार की रक्षा के लिए उनको चिंता, एक शरीर अलग ही अपना साथ नहीं दे रहा है तो एक तो वो अलग कष्ट है, और उसके ऊपर दूसरा कष्ट क्या है, अपने परिवार की चिंता है ना। लेकिन भक्त जो है इन चिंताओं से मुक्त रहता है कि कृष्ण के ऊपर छोड़ देता है, है? कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही पुत्र है, कृष्ण ही मेरी संपत्ति है, सब कुछ चला जाए है ना तो भी जो है कृष्ण मेरे हैं। तो वो कृष्ण को केवल एक कृष्ण में जो आसक्त होता है ना, तो इससे वो जो है हजारों चिंताओं से मुक्त हो जाता है, केवल एक चिंता रहती है, है? कि मुझे कृष्ण को पाना है, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, एक चिंता। और एक चिंता आप नहीं लेना चाहते हैं तो क्या लेते हैं, हजारों चिंताएं लेते हैं, हजारों चिंताएं लेते हैं, है ना। और क्या है, संदेह मान सर्वांग, तो अच्छा है एक चिंता ले लो, एक चिंता, है ना। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदा तपते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे ऐसी मिथ्या परिवार बनाए रखने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगति का कुछ पता नहीं रहता। यहां पर उपाय जी का तात्पर्य समाप्त हुआ, और कहां पर समाप्त हुआ कि उनको पता नहीं रहता, है ना। तो यहां पर उपाय क्या इशारा कर रहे हैं कि आप बताइए उनको, उनको पता नहीं है तो आप बताइए। प्रभुपाद ने जो है ये सब जो मंदिर बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं, कि लोगों को बताया जाए कि हम लोग कृष्ण के परिवार के हैं, है ना। और कृष्ण अपने परिवार में कैसे रहते हैं, एक छोटे बालक की तरह रहते हैं, एक छोटे बालक की तरह रहते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं है परिवार की जो है वो अपना शासन चलाते हों। गोलोक धाम में कृष्ण का शासन नहीं होता, कृष्ण के ऊपर शासन होता है। कृष्ण का परिवार अपने परिवार के जो है वो द्वारा शासित रहते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब आज के इस श्लोक का जो है भक्ति वेदांत संदेश है, संदेश है। तो वो यहां पर भी राधा कृष्ण को मैंने देखा, अभी पहली बार देखा, कितने प्यारे लग रहे हैं, कैसे अपनी गर्दन को मोड़े हुए हैं, है ना, देखने से एकदम कैसा लगता है स्नेह, है ना। तो भक्त यही चाहता है कि मुझे जो है आप ये अपनापन जो है इस तरह से दे दो कि मैं मतलब अपना समझू, मैं आपको अपना समझू। तो वो चाहते हैं कि अपना लो, मुझे अपना लो, कृष्ण जो है ये चाहते हैं। मतलब ऐसी जो अदा जो कर रहे हैं कृष्ण, तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मुझे अपना लो, अपने पुत्र के रूप में अपना लो, अपने मित्र के रूप में अपना लो, अपने पति के रूप में अपना लो, अपने जो भी हो पिता माता जो भी हो, कुछ अपना संबंध बनाओ उनके साथ में, अपना परिवार का, है ना। तो अब किसी का कोई प्रश्न है, अभी समय कितना, 9 बजे समाप्त करते हैं, कुछ और है? थोड़ा और समय चल जाता, नहीं चलता, नहीं चलता, चल जाता है, कितना, 5 मिनट। अच्छा ठीक है, आपकी ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी धनंजय कृष्ण, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन आध्यात्मिक जगत में भी है, बल्कि इसको ऐसे समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत का ही एक नमूना है। भगवान कृष्ण जो है अपनी लीलाएं यहां प्रकट करते हैं, तो आध्यात्मिक जगत की जो है लीलाओं का एक नमूना है। वहां पर नित्य लीला होती है और यहां पर भगवान जो है लीला करते हैं, तो एक सैंपल दिखाते हैं, ठीक है ना। और जो इस्कॉन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, ठीक है ना, तो इंटरनेशनल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, है ना। लेकिन वहां पर ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो तो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है, आप समझ रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल सोसाइटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है, आप समझे ना। तो इस्कॉन आप कह सकते हैं इस्कॉन, क्योंकि फिर भी उसका फुल फॉर्म तो वही रहेगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और इंटरनेशनल सोसाइटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दोनों का जो शॉर्ट फॉर्म है वो एक ही है इस्कॉन, लेकिन थोड़ा अंतर है। यहां पर हमें जो है कुछ नियम बताए जाते हैं कि आप इन नियमों का पालन करो ताकि आप कृष्ण भावना भावित हो जाएं, तो वहां पर ऐसे कोई नियम नहीं है, आप समझे। यहां पर जो है कृष्ण प्रेम पाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन वहां पर सब लोग कृष्ण प्रेम है, तो प्रेम का ही नियम है और कोई नियम नहीं है, और प्रेम के कारण सब नियमों का पालन होता है अपने आप। यहां पर फोर्स किया जाता है, कुछ डर भी होता है ना, और डर होना भी चाहिए, जरूरी भी है कि अगर मैं मंगल आरती में नहीं उठूंगा, अगर मैं क्लास में नहीं बैठूंगा, तो मुझे यहां नहीं रहने दिया जाएगा। जैसे अस्पताल, अस्पताल में क्या होता है, अगर कोई मरीज भर्ती है तो उसको डर होना चाहिए, डर तो होना चाहिए कि अगर मैं दवाई नहीं खाऊंगा, अगर मैं डॉक्टर के हिसाब से नहीं चलूंगा, तो मुझको यहां से निकाल दिया जाएगा, तो यहां डर है, ठीक है ना। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ डर नहीं है, वहां पर जो है प्रेम के कारण सब जो है कृष्ण की सेवा में लगे, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना, इसलिए एक दूसरे से कोई वो विरोध नहीं होता है, कि कृष्ण केंद्र में है, कृष्ण को वो भी प्रसन्न कर रहे हैं, उनका अलग फील्ड है या सर्किल है, आप भी कृष्ण को प्रसन्न कर, आपका अलग सर्किल है, आप समझे। तो इसलिए कृष्ण केंद्र है, तो जितने भी सर्किल बनाते हैं बनते हैं, वो कभी एक दूसरे को काटते नहीं, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, हम अपने को केंद्र बनाते हैं, मेरा सर्किल, आपका अलग सर्किल है, तो कटेगा ही, आप समझे ना। मैं अपना जो गोला बनाता हूं, मैं अपना मंडल बनाता हूं, आपका अपना मंडल है, तो वो कटेंगे ही, विरोध होगा ही, ठीक है ना। मैं वहां पर कृष्ण ही एकमात्र केंद्र में है। हाँ जी सचिवपति, इनका प्रश्न है कि अगर बच्चे चाहें तो बड़े बन सकते हैं, हाँ चाहें तो बड़े बन सकते हैं, लेकिन कोई चाहता नहीं, क्योंकि जो जिस अवस्था में उनको इतना सुख मिलता है, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं उसके सुख का। आप तो तब चाहते हैं ना जब आपको सुख का अंत हो जाता है, तो फिर आप चाहते हैं भाई अब तो मुझे दूसरा मतलब जीवन चाहिए, दूसरे प्रकार की स्थिति चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन इसमें इतना सुख है, इतनी वेराइटीज हैं इसमें भी, विविधताएं हैं, कितने विविध प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, वेराइटीज हैं, इसलिए कोई नहीं चाहता। ठीक है ना? और कोई प्रश्न किसी का? आपका है ग्रेट। अब कई लोग जा रहे हैं। अच्छा हाँ, आप फिर से बोलो क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, दुरिता नहीं करोती, यहां पर दुरिता नहीं, यानी पाप कर्म और दुराशया, गलत इरादे से, गलत इरादे से, क्योंकि अपना मेरा परिवार है तो इनको जो है मैं कष्ट पहुंचाऊं, इनको मार करके, इनसे छीन करके, इनका शोषण करके मैं अपने परिवार का पालन करूंगा, दुराशया भी है। और दुरितानी करोती, दुरितानी है, गलत काम करता है, क्योंकि यहां पर आसक्ति है तो यहां पर जो है उसकी द्वेष भी है, यहां स्नेह है अपने परिवार में तो दूसरे व्यक्ति से द्वेष भी है कि इसको जो है मैं मार दूं, इससे छीन लूं, किसी भी तरह से इसको कष्ट पहुंचा करके भी मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं, तो ये राग द्वेष कहलाता है। यहां राग है, वहां द्वेष है। वहां पर आध्यात्मिक में तो पूरा परिवार है, अपना ही परिवार है। अगर राग है तो राग ही राग है हर जगह, कोई पराया है ही नहीं, कोई कृष्ण के परिवार से बाहर कोई है ही नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय।